हेलो बच्चों, मेरा नाम प्राची गोयल है। मैं एमए इकोनॉमिक्स कर रही हूँ इग्नू यूनिवर्सिटी से। आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 10th क्लास का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। हमने इससे पहले पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, हमें इसकी कैसे जरूरत होती है, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि प्रति व्यक्ति आय क्यों राष्ट्रीय आय से ज्यादा उचित समझी जाती है। फिर हमने ये पढ़ा कि भारत में राष्ट्रीय आय की कैसे गणना की जाती है। इसके तहत हमने ये पढ़ा कि CSO क्या है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण है और उन क्षेत्रों में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि एक विकसित देश में इन जो क्षेत्रों का जो महत्व है या परिवर्तन है वो कैसे हो रहा है। फिर अंत में हमने ये पढ़ा कि जो भारत देश है उसमें ये क्या यही प्रक्रिया फॉलो की जा रही है, यही प्रणाली फॉलो की जा रही है या फिर कुछ और अंतर है, और अगर अंतर है तो उसमें क्या है और उसमें क्या कमी है। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है, ये है आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। अब हमने ये पढ़ा कि हम ये एक देश का कैसे कैसे हम उनकी आय निकाल सकते हैं और उसका सकल उत्पादन निकाल सकते हैं। अब ये जो चीजें होती हैं ये हम बाकी के देशों, हर एक देश में निकलती है, तो इस वजह से हम ये चीजें बाकी के देशों से तुलना करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस देश की आय सबसे अधिक होगी वो देश ज्यादा विकसित समझा जाता है। वो ऐसा इसीलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस देश की आय ज्यादा होगी तो वह देश अपने जो लोग हैं उनकी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है। मतलब जो उस देश में रहने वाले लोग हैं उनको जो जो चीजें चाहिए, जो जो सेवाएं चाहिए, वो देश उधर उन्हें उपलब्ध करवा सकता है क्योंकि उसके पास अधिक आय है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो कमी थी वो ये है कि हर एक देश की जो जनसंख्या होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आप देखें तो इंडिया की कितनी बड़ी जनसंख्या है, और अगर यही जनसंख्या मैं अमेरिका से कंपेयर करूं तो हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और अमेरिका की जनसंख्या हमारे मुकाबले बहुत कम है। हम जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो इंडिया है, हमारे जो भारत है वो कितना बड़ा देश है। तो अगर हम अपनी सिर्फ राष्ट्रीय आय के बलबूते पर बाकी के देशों से कंपेयर करेंगे तो हमें ये क्लियर नहीं पता चलता कि हमारे देश में कितने लोग हैं और क्या क्या सभी लोगों की इच्छाएं पूरी की जा रही है उन पैसों से या की जा सकती है उन पैसों से। इसीलिए जब हम राष्ट्रीय आय की तुलना करते हैं तो या तो हम औसत या प्रति व्यक्ति आय को हम ज्यादा अधिक महत्व प्रदान करते हैं। और जैसे जैसे समय आता है और अगर इस प्रति व्यक्ति आय औसत में या फिर राष्ट्रीय आय औसत में कोई भी वृद्धि होती है तो हम ये समझते हैं कि उस देश में आर्थिक वृद्धि हुई है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय है ये एक देश की जो विकास की स्तर है उसको मापने में काफी ज्यादा उपयोगी है। लेकिन जो आजकल हमारे जितने भी अर्थशास्त्री हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों तरीके सही है लेकिन ये हमारे पर्याप्त माप नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले वाले भाग में भी बताया था कि लोगों को आय चाहिए होती है, उनको आय की बहुत जरूरत होती है, वो उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन लोगों को आय के साथ साथ बाकी की ऐसी चीजें भी चाहिए जो उनको जो पैसे नहीं खरीद सकते हैं, जैसे कि एक स्वतंत्र व्यवहार, समानता का व्यवहार, दूसरों से आदर, उनकी खुद की सुरक्षा, ये सब चीजें जो है ये हमारे जो पैसे हैं, जो ये आय है ये खरीद नहीं सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक राष्ट्र है उसके आय के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे ही या आय ही महत्वपूर्ण नहीं होती है। क्योंकि अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों को आय भी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ उनको वो भी चाहिए कि उन्हें लोग प्यार से बात करें, आदर से बात करें, उनको सम्मान मिले, उनको स्वतंत्र वातावरण मिले इत्यादि, तो ये भी लोगों को चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिर्फ राष्ट्रीय आय है ये ही एक पर्याप्त माप नहीं है, बल्कि अगर हम एक देश के लोगों का सही तरीके से निवारण करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं कि क्या वे सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या उनके पास पूरी आजादी है कोई भी काम करने के लिए, क्या लोग उन्हें आदर से देखते हैं, ये सब चीजें भी एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हम इसके कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि पहले ये माना जाता था कि जिस देश की ज्यादा आय होगी उस देश के लोग ज्यादा सुखी होंगे, लेकिन धीरे धीरे अब ये भी सोचने आने लगा कि ये जरूरी नहीं कि जिस देश की आय ज्यादा है उस देश के लोग संतुष्ट होंगे या खुश होंगे, बल्कि ये माना जाने लगा कि आय के साथ साथ लोगों को उनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं जीवन में भी सुधार होना आवश्यक है। जब ये सब होगा तभी हम कह सकते हैं कि एक देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले आर्थिक वृद्धि उसे कहा जाता था जब किसी राष्ट्र में जब भी कोई चीज उत्पादित हो रही है उसमें पहले से काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, लोग उसके इस्तेमाल में और उसको बनाने में और ज्यादा उसमें कुशल उपयोगी हुई है, तो इसी को आर्थिक वृद्धि कहा जाता था। और आर्थिक वृद्धि में गुणात्मक आयाम नहीं इंक्लूड किया जाता था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गुणात्मक आयाम होता है कि एक व्यक्ति को कितनी सुरक्षा मिल रही है, क्या वो काम आराम से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, क्या वो संतुष्ट है, ये सब चीजें आर्थिक वृद्धि में नहीं इंक्लूड की जाती थी, तो हम इसे आर्थिक वृद्धि कहते थे। अब दूसरा हमारा आता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है या फिर बहुत व्यापक अवधारणा होती है। इसमें क्या होता है कि आर्थिक विकास में किसी भी देश का राष्ट्रीय आय है या प्रति व्यक्ति आय है उसमें तो बढ़ोतरी हो ही रही है, लेकिन साथ साथ उसके सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचे, उत्पादन की तकनीक एवं अर्थव्यवस्था की संरचना को भी अनुकूल परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये है कि आर्थिक विकास में वो चीजें भी इंक्लूड होती हैं जिन्हें हम गुणात्मक आयाम बोलते हैं। विकास हमारे बहुत लंबे समय से देखा जाता है, लंबे समय तक देखा जाता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के साथ साथ अगर सभी लोगों का सामाजिक, राजनीतिक एवं जीवन के अन्य सभी आयामों का भी विकास हो रहा है तो उसे हम आर्थिक विकास कहेंगे। आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। जो आर्थिक वृद्धि है वो केवल और केवल हमारे जितनी भी आर्थिक चीजें होती हैं जैसे आय हो गई, प्रति व्यक्ति आय हो गई, इसमें वृद्धि देखती है, लेकिन जो आर्थिक विकास होता है वो इनके साथ साथ लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, उनके सामाजिक, राजनीतिक, उनके खुद के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, इन सबको भी देखती है। अब जो ये आर्थिक विकास होता है इसमें हम गुणात्मक आयाम लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें जैसे मैंने आपको बताया सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इन सब चीजों को भी हम ध्यान में रखते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे प्रति व्यक्ति आय है, जो हमारा राष्ट्रीय आय है, अगर उसमें वृद्धि होगी तो इन गुणात्मक आयामों में भी वृद्धि होगी, इनकी वृद्धि अलग से निकाली जाती है, अलग से देखी जाती है। अब इस चीज में एक और समझने वाली बहुत जरूरी बात यह है कि जो ये आर्थिक विकास है हम इसमें हमारा प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इसको भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो जो आर्थिक विकास है वो भी इस आर्थिक विकास का एक पार्ट होता है और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिना वृद्धि कोई भी विकास नहीं हो सकता है। ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके समझने के लिए है कि कैसे आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास का एक पार्ट होता है और वृद्धि क्यों विकास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी देशों की या किन्हीं भी देशों की तुलना करनी है तो और उनमें हमें विकास का स्तर भी देखना है और कल्याण का मापदंड भी देखना है, तो आर्थिक वृद्धि से आर्थिक विकास ज्यादा उपयुक्त माप है। अब जितने भी गुणात्मक आयाम है इनको भी निकालने का या इनको भी कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका होता होगा, तो इस वजह से जब हमने ये आर्थिक स्थिति के साथ साथ गुणात्मक आयामों का भी हमने चयन किया तो हमने इनके लिए अलग अलग अवधारणाएं बनाई जिनको हमने नाम दिया सतत विकास, समावेशी विकास, मानव विकास। इन तरीके से अलग अलग चीजें हमने बनाई ताकि हम ये जो गुणात्मक चीजें हैं इनको कैसे कैलकुलेट कर सके। अगले भाग में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला हमारा विकास है वो है सतत विकास। सतत विकास को हम इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अगर आपने ये वर्ड सुना होगा तो आपको इस वर्ड का मतलब जरूर पता होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास क्या होता है? ये वह विकास होता है जब हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सामान छोड़ते हैं और जो हमारी वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान के लोग हैं, उनकी भी सारी आवश्यकताएं पूरा करते हैं। इसमें जो हमारे पास हमारा वातावरण है, हम इसको यूज करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को हम इसको यूज करते हैं और हम ये सोच के इस्तेमाल करते हैं कि हमें उतना ही इस्तेमाल करना है जितना हमें अभी जरूरी है और ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हमें ज्यादा से ज्यादा सामान बचाकर रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधनों को बरकरार रखते हुए, मतलब उतना ही इस्तेमाल करते हुए जितना हमें आवश्यक है वो करते हुए जब हम हमारी आर्थिक विकास करते हैं तो उसे सतत विकास कहते हैं। अब जो दूसरा विकास है वो है हमारा समावेशी विकास। समावेशी विकास को हम इंग्लिश में ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब ओवरऑल का मतलब होता है हर तरीके से। तो समावेशी विकास वो विकास है जो समाज के हर एक इंसान तक, हर एक वर्ग तक पहुंचता है, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, मतलब कोई भी उसका जेंडर हो, वो किसी भी तरीके की भाषा बोलता हो, वो किसी भी तरीके का उसका कलर हो, या फिर वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, कितना भी गरीब हो, इन सब से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और जो विकास है वो हर तरफ हर जगह पर पहुंच सके। जो समावेशी विकास है वो ज्यादातर जो वंचित वर्ग है उन पर जोर देने का बल देता है। इसके साथ साथ ये आय में समानता के साथ साथ अवसर की समानता पर भी ज्यादा बल देता है। और हमारा जो आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट विकास है वो है मानव विकास। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ये 1990 में बनाया गया था और महबूब उल हक के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र विकास में इसमें तीन चीजें इंक्लूड करी गई थी। वो था ज्ञान, मतलब शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, और जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति आय इस मानव विकास में जोड़ी जाती है। मानव विकास का मतलब होता है कि जो भी इंसान है उसका पूरा डेवलपमेंट या पूरा विकास हो रहा है, उसको शिक्षा भी मिल रही है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी भी है, उसको कोई बीमारी भी नहीं है और वो बहुत आराम से अपनी आय भी कमा सकता है। तो जो मानव विकास है ये आज के जमाने में, आज के वर्तमान काल में बाकी सभी जो भी मेजर हमने पढ़े उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें आर्थिक वृद्धि भी आती है, इसमें आर्थिक विकास भी आता है और मानव विकास तो आता ही आता है। तो ये जो हमारा भाग है, ये जो हमारा माप है, मापदंड है, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। और जब हमें काफी सारे देशों या राष्ट्रों के बीच उनके कल्याण और विकास के स्तर को मापना होता है तब हम मानव विकास को ज्यादा पॉपुलर करते हैं या फिर बहुत ज्यादा हम उसे यूज करते हैं। अब हमारा जो अगला भाग है इसमें वो है भारत में नियोजन। इसका मतलब होता है प्लानिंग। अब जो प्लानिंग होती है, जो नियोजन होता है, वो किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम एक पर्टिकुलर या फिर एक छोटे से इंसान की ही बात करें या आपकी ही बात करें, अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपकी बोर्ड्स की परीक्षा होगी इस साल, तो अब आपको अपनी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है कि मुझे क्या पहले पढ़ना है, क्या चीज कैसे करनी है। तो आप उसके लिए सबसे पहले अपना नियोजन बनाएंगे कि मुझे किस तरीके से काम करना है, या आप एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है तो सबसे ज्यादा समय मैं इस सब्जेक्ट पे दूंगा, ये सब्जेक्ट मुझे बहुत इजी लगता है या मैं बहुत आराम से कर सकता हूं या कर सकती हूं तो ये मैं थोड़ा बाद में करूंगा, मुझे फिर इतना गैप चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, मुझे अपनी टीचर से फिर इस सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, मुझे ऐसे काम करना है, इतना इतना मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, इतने घंटे मुझे पढ़ना है। तो इस तरीके से आप एक रूपरेखा तैयार करते हैं जिसको आप पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, अगर एक घर में शादी हो रही है तो उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा प्लानिंग की या बहुत ज्यादा नियोजन की आवश्यकता होती है। उसमें भी एक पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है कि सबसे पहले कौन कौन से फंक्शन होंगे, किस फंक्शन में कितना बजट लगेगा, हमें किस किस को इनवाइट करना है, सबसे पहले क्या काम करना है, किस किस के लिए क्या क्या सामान लेकर आना है, जो भी दूल्हा दुल्हन होंगे उनके लिए क्या क्या सामान लेकर आना है, और भी अनेक अनेक चीजें होती हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंसान होता है वो ये रूपरेखा इस वजह से तैयार करता है ताकि वह अपने समय, अपने पैसे या फिर धन को और जो उसके पास सामान है, उसके पास जितनी भी चीजें हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके में लगा सके ताकि जो उसको परिणाम मिले वो बहुत ज्यादा अच्छा हो। अब जैसे हमने एक इंसान और एक घर के केस में देखा, उसी तरीके से जब हम राष्ट्र के बारे में प्लानिंग करते हैं, राष्ट्र के लिए प्लानिंग करते हैं, तो उसमें भी ये सब चीजें बहुत ज्यादा उपयुक्त और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। और राष्ट्र में भी इसी तरीके से प्लानिंग की जाती है। तो हम नियोजन कैसे करते हैं? हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास कितने संसाधन है, मतलब हमारे पास कितनी चीजें हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं, हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, और सबसे पहले हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे, इस अगली प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे। तो इस चीज को पूरा नियोजन कहते हैं। जब भी हम नियोजन तैयार करते हैं या प्लानिंग करते हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, हमें क्या प्राप्त करना है। जब भी हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारा क्या उद्देश्य है, हमें क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या समय है, क्या क्या चीजें मौजूद है, और उन्हें हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब जब हमें यह पता चल गया कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे पास क्या क्या संसाधन है, तो अब हम ये देखते हैं कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने जो भी संसाधन है, जितनी भी हमारे पास चीजें हैं, उसको कैसे अलग अलग सही ढंग से बांट सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को और ज्यादा पा सके और उस लक्ष्य के और ज्यादा करीब आ सके। बच्चों, मैंने आपको तीनों चीज बताई, आप इसे किसी भी एग्जाम्पल में डाल लीजिए। अभी जो मैंने आपको पहले पिछले दो एग्जाम्पल दिए हैं, उनमें भी अगर आप देखेंगे तो ये तीनों चीजें उनमें फिट बैठती हैं। तो हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो हम इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हैं। वो चीजें क्या क्या होती है? पहले हम लक्ष्य ढूंढते हैं, डिसाइड करते हैं। दूसरा, हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तीसरा, हम उन चीजों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और ज्यादा अच्छे तरीके से उपयुक्त करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, जो राष्ट्र की अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के विज्ञान को ही आर्थिक नियोजन कहते हैं। अर्थात जितने भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जितने भी आर्थिक संसाधन हैं हमारे पास अभी मौजूद हैं, उनको मैं सामाजिक लक्ष्यों के लिए यूज करूं, क्योंकि लक्ष्य तो हम पूरे समाज के लिए ही देख रहे हैं। भारत जो देश है या कोई भी देश है, वो कोई भी विकास कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा है? वो अपने देश के लिए कर रहा है, देश के लोगों के लिए कर रहा है। तो जितने भी लोगों के सामाजिक लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करने के लिए जो देश है वो उनके पास जितने भी आर्थिक संसाधन है उसको जब इस्तेमाल करता है, इस चीज को हम एक आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब इस चीज में जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान होता है, जो भी काम करता है, वो होते केंद्रीय प्राधिकारी, क्योंकि जो हमारा केंद्रीय प्राधिकार होता है वो पूरे इंडिया को देखता है। जो राष्ट्रीय प्राधिकार होता है वो एक राष्ट्र को, मतलब जो दिल्ली की सरकार होगी वो दिल्ली के विकास को देखेगी, जो मध्य प्रदेश की होगी वो मध्य प्रदेश की देखेगी, उसी तरीके से जो बाकी के राष्ट्र की सरकारें होंगी वो अपने अपने राष्ट्र को देखेंगी। लेकिन जो केंद्र प्राधिकार होता है वो पूरे भारत देश को देखता है। तो जितने भी हमारे पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था है, उसकी क्या गति होगी, उसकी क्या दिशा होगी, क्या क्या चीजें हमें हासिल करनी है, किस तरीके से हासिल करनी है, क्या क्या कानून बनाने हैं, क्या क्या नियम बनाने हैं, क्या क्या नीतियां बनानी है, ये सारी चीजें कौन देखता है? केंद्रीय प्राधिकार। और अगर हम भारत देश की बात करें तो हमारी केंद्रीय सरकार इस वक्त कौन है? बीजेपी। तो हमारे जितने भी भारत देश में जितने भी चीजें देखी जा रही हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी केंद्रीय सरकार की, जो है बीजेपी की। हम एक आर्थिक नियोजन किसे कह सकते हैं? जब हम नियोजन करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि हमें अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे डेवलप करना है, उसको कैसे उसका विकास करना है, या फिर जितनी भी उसकी चीजें जो पीछे रह गई है, आर्थिक जो लक्ष्य है इसके, कैसे उसे प्राप्त करना है, इन चीजों को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। एक बड़े राष्ट्र स्तर पर पहली बार ये आर्थिक नियोजन सोवियत यूनियन ने स्टार्ट किया था। ये उन्होंने 1928 में किया था और उन्होंने इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा की थी। और जो उनकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो अपने आप में एक क्रांति थी। क्योंकि पहली बार किसी ने इतने बड़े राष्ट्र स्तर पर कोई काम किया था और वो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और उन्होंने इसमें पूरे राष्ट्र को देखकर उसकी उसका नियोजन किया था और उसके आर्थिक विकास के लिए, उसके आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत चीजें सोची थी। और स्वतंत्रता के बाद भारत ने भी ये पंचवर्षीय योजना अपनाई और उन राष्ट्रों में आया जिन्होंने ये मॉडल या फिर ये तरीका अपनाया। अब जो ये हमारी प्लानिंग है, ये जो आर्थिक प्लानिंग है, ये जो आर्थिक नियोजन है, इसको कैसे करना चाहिए, इसके लिए जितने भी हमारे विद्वान थे, जितने भी भारतीय विद्वान थे, वो भारतीय पढ़े लिखे लोग थे और अर्थव्यवस्था वाले लोग थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा और उनको बहुत ज्यादा इस चीज ने प्रभावित किया। उन्होंने 1930 और 1940 में अनेक अनेक चीजें, अनेक अनेक योजनाएं बनाई, अनेक अनेक प्रस्ताव रखे। जब हम स्वतंत्र हुए, हमारे जितने भी मंत्री थे, उन्होंने इन प्रस्तावों को समझा, इनको देखा और फिर इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमारे विकास का जो मार्ग है उसे तैयार किया। भारतीय आर्थिक नियोजन के इतिहास में जो सबसे पहला प्रयास किया गया वो सर एम विश्वेश्वरैया ने किया था 1934 में। इन्होंने अपनी पुस्तक निकाली जिसका उन्होंने नाम दिया प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया और उसमें इन्होंने ये विकास का जितना भी नियोजन था, आर्थिक नियोजन था, ये उन्होंने उसमें डिटेल में लिखा था। अब जो ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा हमें प्लानिंग की, बहुत सारा टाइम की जरूरत है। तो इस वजह से जो हमारी भारत सरकार थी उसने मार्च 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी। जो आयोग था इसका मुख्य कार्य ये था कि वह देश के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीजें इनके पास मौजूद है उसका आकलन करे, मतलब ये बताए कि कितनी चीजें हैं, उन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनको कैसे और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से लक्ष्य हैं, किस लक्ष्य को या किस उद्देश्य को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, कौन सा हमें जो प्रॉब्लम है उसको पहले देखना चाहिए, हमारे जितने भी संसाधन हैं उनको कैसे अलग अलग अलॉट करना चाहिए, मतलब उनको कैसे कैसे बांटना चाहिए अलग अलग, इन सब चीजों के बारे में उसका प्रस्ताव रखना और उनके बारे में योजना बनाने का इस संस्था का काम था। जो ये योजना थी इसका यह काम था कि यह जो हमारी सरकार है उसकी एक सलाहकार है, मतलब ये जितने भी इन्होंने रिपोर्ट बनाई है ये हमारी सरकार को देगी कि उनके हिसाब से ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। फिर ये सरकार के ऊपर निर्भर था कि क्या वो उस आयोग की जो उन्होंने चीजें लिखी है उसके साथ जाना चाहते या उसमें कुछ फेरबदल करना चाहते। इस आयोग का काम थोड़ा और आसान करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए और विकेंद्रीकरण करने के लिए अगस्त 1952 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया। अब ये जो हमने राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई थी इसका काम ये था कि जो हमारा ये जो आयोग था, प्लानिंग कमीशन थी, ये जो भी तरीके तैयार कर रही थी, जितनी भी योजनाएं बना रही थी, ये उसका अनुमोदन करती थी, मतलब उसको देखती थी कि क्या ये जो तरीके हैं, जो उन्होंने प्लानिंग करी है वो बिल्कुल सही करी है, जो योजनाएं बनाई है वो बिल्कुल सही है, और समय समय पर ये भी देखती थी कि क्या ये योजनाओं से लोगों का उद्धार हो रहा है, लोगों के विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो ये संस्था थी यह एक सलाहकारी संस्था है। तो आप अब ये समझ ही रहे होंगे जो ये प्लानिंग कमीशन है, जो ये आयोग, योजना आयोग है, ये है राष्ट्रीय विकास परिषद के अंदर काम करता है। मतलब योजना आयोग जैसे मैंने कहा वो प्लानिंग करके देता है इनको, और ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो ये देखता है कि क्या उन्होंने जो योजनाएं बनाई है वो सही है कि नहीं है और इनमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है इत्यादि। अब भारत में जो ये नियोजन है, प्लानिंग है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा गया है, स्पेशली आर्थिक नियोजन को। स्वतंत्रता के बाद भारत ने बहुत कोशिश करी और बहुत ऐसी योजनाएं बनाई ताकि वे भविष्य में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सपने सरकार ने देखे हैं, उसको वो साकार कर सके नियोजन के माध्यम से। इस वजह से जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इन पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या भारत के लक्ष्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, कैसे उन्हें प्राप्त करना है, इसके लिए काफी ज्यादा प्रयत्न किया गया है। अभी हम एक सार में देखें कि भारत ने जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं, उसमें उनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला, जितना भी आर्थिक विकास है उस लक्ष्य को प्राप्त करना, जितना ज्यादा अधिक विकास हो सकता है उतना ज्यादा करना, जो गरीबी की समस्या है उसको खत्म करना या उसका समाधान करना। तीसरा, आय में जितनी भी असमानताएं हैं उसको खत्म करना, मतलब जितने भी लोग हैं चाहे वो किसी भी लिंग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी कलर के हों, उनको समानता मिले असमानता ना मिले। जितनी भी मानवीय पूंजी लोगों के पास है, जितनी भी बैंकों में पूंजी है, उसको कुशलतम उसका अच्छे से उपयोग करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना। सभी क्षेत्रों में ये यकीन दिलाना कि कोई भी इंसान खुद काम स्टार्ट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, लेकिन स्पेशली प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में, मतलब खनन और औद्योगिक क्षेत्र में जो कच्चे माल का उत्पादन है वो भी लोग अपने आप कर सकते हैं, उसमें उनको सरकार की जरूरत ना हो। हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न बनाना, टेक्नोलॉजी से ज्यादा इन्फ्यूज करना और ज्यादा से ज्यादा उसको ऊंचाइयों तक लेकर जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्वस्थ गांव को आराम से विचार करना और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, और सबसे इम्पोर्टेंट, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना। ये इसलिए क्योंकि अगर हमारी आर्थिक स्थिरता नहीं होगी तो हम विकास की राह पर नहीं चल पाएंगे। और आखिरी, जितनी भी हमारे क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो जो असमानताएं हैं उसको खत्म करना और ये देखना कि सारे जो क्षेत्र हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर आज तक हमारे भारत देश ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, किस तरीके से बनाई, कब कर क्या पाया, कितनी बार ये बार बार बनाई गई, इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस तरीके से बनाई गई। सबसे पहला जो इसमें चेंज आया था या थोड़ा परिवर्तन हुआ था वो हुआ था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो लगातार युद्ध होने की वजह से सूखे की भी फिर कमी आ गई थी, मूल्य वृद्धि में भी कमी थी, संसाधनों का जो क्षय था, मतलब जितने भी संसाधन थे, जितने भी रिसोर्सेस थे, उनकी कमी आ गई थी, लोगों के पास ज्यादा सामान नहीं था, तो इस वजह से जो सरकार थी उसने 1966 से लेकर 1969 में तीन योजनाएं बनाई थी, मतलब तीनों साल में इसने एक एक योजना बनाई थी, ना कि पंचवर्षीय योजना बनाई थी। और जो ये पीरियड था या फिर जो ये अवधि थी इसको योजना अवकाश कहा जाता है। फिर दूसरा इसमें परिवर्तन तब आया था जब कांग्रेस सरकार थी, उसने जब पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाई थी, तो जैसे नाम से पता चल रहा है तो ये जो योजना होती है वो 5 साल के लिए होती है, लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने 1978 में पहले ही ये योजना खत्म कर दी और 1978 से लेकर 1983 तक, मतलब लगभग 6-7 साल के लिए उन्होंने ये योजना बार बार इस्तेमाल करी। पेपर पर ये योजना 1978 से लेकर 1983 तक है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 1980 के पहले ही ये योजना समाप्त कर दी और 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक इन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना दोबारा स्टार्ट करी और उसकी घोषणा करी। और जो 78-83 में जो पंचवर्षीय योजना इस्तेमाल हुई थी उसमें जो 1978 और 79 का जो पीरियड था, जो वो एक वर्ष था, उसको इन्होंने पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया और जो 1979 और 1980 के जो पीरियड था उस योजना को एक वर्षीय योजना की तरह इन्होंने देखा। और इसी वजह से, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी और जो इतनी भी हमारी राजनीतिक स्थिति थी वो बार बार बदल रही थी, वो एक स्थिर नहीं थी, एक समान नहीं थी, और हमारे देश में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहे थे, तो इस वजह से जो 1990 में आठवीं पंचवर्षीय योजना आनी थी उसको स्टार्ट ही नहीं किया गया। जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई, इसमें इन्होंने आधार क्या रखा, इन्होंने क्या चीज पे मुख्य रूप से ध्यान दिया कि जो भी डेवलपमेंट हो या जो भी विकास हो वो बहुत ज्यादा हो, तीव्र हो, समावेशी, मतलब हमारे बहुत ज्यादा इंटेंस हो, मतलब हमारे इकोनॉमी के अंदर हो और बहुत ज्यादा हो, और धारणीय विकास हो, मतलब कि बहुत लंबे समय तक चलने वाला या स्थिर विकास हो। और इसी वजह से जो ये योजना थी इसमें 8% का विकास दर रखा गया है, और इसी वजह से इस योजना में हमारा जो विकास दर रखा गया या उसे जो माना गया वो 8% माना गया। और अगर आपको पता हो तो जो हमारा अभी जो करंट विकास दर है वो लगभग 5.5% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना ज्यादा दूर जाना है या कितना ज्यादा हमें प्रयास करने की ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ गरीबी को हटाना, बेरोजगारी को कम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना आदि के लक्ष्य रखे गए हैं। अब हमारा आखिरी भाग है नीति आयोग। इसकी जो स्थापना है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। तो आप ये समझ सकते हैं ये कितना रीसेंट है। आयोग हमारे बदलते भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी साबित हो रहा है। जब नीति आयोग की 2015 में स्थापना हुई थी तब इसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, उपाध्यक्ष श्री अरविंद पानगड़िया थे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत थे। वर्तमान समय में जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार, बाकी दोनों अभी भी सेम हैं। इस नीति आयोग में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं मतलब केंद्र शासित राज्य हैं और उसमें जो उपराज्यपाल हैं मतलब जो गवर्नर्स हैं वो भी नीति आयोग के सदस्य हैं। नीति आयोग का जो काम है वो ये है कि वो हमारी भारत सरकार के लिए जितनी भी पॉलिटिकल मतलब रणनीतिक योजनाएं हैं, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय के लिए जो योजनाएं हैं नीतियां हैं वो बनाती हैं और तकनीकी सलाह भी प्रदान करती है। प्लस कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है, कहाँ होना है, इसके भी निर्माण के लिए नीति आयोग जिम्मेदार है। इसी वजह से इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, क्योंकि भारत सरकार के जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं उसको उसमें एक सलाहकार की तरह ये नीति आयोग काम करती है। ये जो नीति आयोग है ये कोई अलग से नहीं बनाया गया, बल्कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया था, योजना आयोग के बारे में बताया था। ये नीति आयोग वही है जो प्लानिंग कमीशन था, उसको उसका नाम बदल के हमने क्या रख दिया, नीति आयोग। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सभी राज्य के राष्ट्रपति और सभी जितने भी हमारे केंद्र शासित राज्य हैं उसके उपराज्यपाल इसमें होते हैं, इसके सदस्य होते हैं, साथ ही में हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भी इसमें एक सदस्य होते हैं। तो ये सभी मिलके कैसे एक राष्ट्रीय हित के लिए काम करें, ये नीति आयोग उसके लिए बहुत अच्छा और बहुत सर्वश्रेष्ठ मंच साबित हुआ है। यह ये मोटिवेट करता है कि जितने भी लोग हैं वो सारे मिलजुल कर काम करें और राष्ट्र हित के लिए काम करें। जब नीति आयोग की स्थापना हुई तो इसमें दो और चीजों की स्थापना हुई, मतलब इसके दो और काम है या फिर इसके दो और केंद्र हैं। वो केंद्र हैं टीम इंडिया हब तथा ज्ञान और नवाचार हब। अब टीम इंडिया हब क्या है? टीम इंडिया हब जैसे नाम से ही पता चल गया, जितने पूरे इंडिया में जितनी भी हमारी राज्य सरकारें और उपराज्यपाल हैं उन सब सरकारों को एक साथ मिलाती है केंद्र सरकार के, और नई नई नीतियां राज्य हित के लिए राष्ट्र हित के लिए तैयार की जाती है। और जो ज्ञान और नवाचार हब है वो नीति आयोग की थिंक टैंक क्षमताओं को मजबूत बनाता है। इसका अर्थ ये है या फिर इसका एग्जाम्पल में आप ये समझ सकते हैं कि जैसे नीति आयोग कोई दीर्घकालीन नीति बना रहा है या फिर कोई कार्यक्रम का निर्माण कर रहा है या कोई तकनीकी सलाह दे रहा है तो उसके लिए नीति आयोग को ज्ञान और नवाचार हब की जरूरत होती है। उसको सभी चीजों से, सभी लोगों से अलग अलग तरीके से उनसे बात करने की आवश्यकता होती है जो ये नीति आयोग का प्लेटफॉर्म उन्हें प्रदान करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नीति आयोग है यह एक सहयोगपूर्ण संस्था है, मतलब यहाँ पर सभी तरीके के लोग, सभी अलग अलग क्षेत्र के लोग मिलते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं ताकि वह हमारे राष्ट्र को और ज्यादा आगे बढ़ा सके और हमारे राष्ट्र को विकास की राह पर और ज्यादा मजबूत कर सके। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और हमारा पार्ट टू भी इधर खत्म होता है। इधर अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सारा आपके चैप्टर्स में जो पीछे क्वेश्चंस में है सारा का सारा कवर हो रहा है। थैंक यू।